रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बल धामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्जातं नमामि। सब अयोध्यावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाराज दशरथ आए क्यों नहीं। सुमंत जी गए और वहां राम जी को लाने के लिए आज्ञा मिली। सुमंत जी ने देखा कि बिना सोचे समझे लोगों में खलबली नहीं मचानी है, इसलिए वो आए और लोगों से बोले, ठहरो ठहरो ठहरो, अभी मैं राम जी को बुलाने जा रहा हूं। लोगों में और उत्साह, बस अभी इधर राम जी आएंगे अब होगा। वो रास्ते में विचार, देखो राम जी को बुलाना कोई छोटा मोटा मकान थोड़ी था। दशरथ जी का यहाँ महल, राम जी का वहां महल, लक्ष्मण जी का वहां महल, भरत जी का वहां महल, दूर दूर खूब लंबा चौड़ा स्थान। तो सुमन जी महाराज रास्ते में विचार करते हैं, राम को बुला करके क्या कहेंगे, महाराज क्या कहेंगे। ऐसा लगता है ये जो केकई है कुछ न कुछ इसने जाल रचा है। यदि कोई अच्छी बात होती, शुभ बात होती तो महाराज इतने रोते नहीं, पर कोई न कोई बात जरूर है, पर क्या बात है फिर पता नहीं चला। देखो अब राम जी आ रहे हैं, क्या होता है। ऐसा मन में सोचते सोचते राम जी के घर महल में पहुंचे। राम जी ने सुमन जी का आदर किया पिता के समान। तो जब राम जी का मुख देखा, ध्यान से देना सुनना, ये मुख देखने का ही अध्याय है अयोध्या कांड। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं राम जी की मुख छवि देखता हूं, जो मुख छवि राज्याभिषेक की बात सुनकर के तो प्रसन्न नहीं हुई और वनवास की बात देख करके नाराज नहीं हुई, और दशरथ जी महाराज ने मुख छवि देखी तो मुकुट को बराबर किया, तो कान पर सफेद बाल देखे तो राज्याभिषेक का सब प्रसंग आया। ये मुख छवि पर ही है। और केकी के कोप भवन में गए तो सुमुखी, सबसे पहले सुमुखी कारे तो सुंदर मुख वाली है, गजगामिनी है, पिकवचनी है, ऐसा कहा। और दशरथ जी महाराज जब गए तो उसने मुख ही मोड़ा पहले पहले, केकई ने मुख मोड़ा। ये मुख के ऊपर टिका हुआ अपना अयोध्या कांड है। तो राम जी महाराज का मुख देखा, निरखी बदनु कही भूप रजाई, उनका मुख देखा, मुख बड़ा प्रसन्न, पर कैसा प्रसन्न, जैसे दीपक जगता है। रघुकुल दीपई चले उ लवाई, रघुकुल का मानो दीपक है, उसको लेकर के रवाना हुए। कहा कि आपको महाराज बुला रहे हैं, अच्छा पास में केकई माता है, आहा और कहा है कि राम जिस हालत में ना उसी हालत में आ जाए। अब राम जी तो ऐसे ही थे, घर में जैसे रहते हैं। दशरथ जी महाराज की आज्ञा सुनते ही सचिव के साथ ही राम जी है जैसे ही रवाना हुए। तो जब राम जी दशरथ जी के महल में जाने लगे, रास्ते में लोग खड़े थे, अरे इनको तो युवराज बने, तो सिर के ऊपर सिरताज होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया अस्कने पहनी होनी चाहिए, आगे पीछे इनके सेवक लोग होने चाहिए, इनके जो है इनके पास में भाई आसन होना चाहिए, छत्र होना चाहिए, सीता जी भी साथ में आनी चाहिए, क्या बात है। राम कुभांति और सचिव संग जाई, देखी लोग जहते बिल खाई, क्या बात है। महाराज तो आए नहीं और ये क्या बात हो रही, थोड़ी थोड़ी उनको संदेह की झाई दिखी। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज, सहम परे हो लख सिंह ने मनहु वृद्ध गजराज। अब राम जी महाराज जो पिताजी के पास गए, उस समय राम जी का मुख कैसा है, रघुवंश मणि मणि के समान चमकता है, पहले दीपक के समान हो। जो जो प्रतिकूलता आ रही है त्यों त्यों राम जी की शोभा बढ़ रही है। दीपक के समान थे घर में, पिताजी के पास आए तो मणि के समान चमकने लगे। देखा कि भाई जैसे सिंगनी के पास कोई बूढ़ा हाथी पड़ा हुआ हो, घायल हुआ हाथी, ऐसे उस महल का दृश्य दिखाई दिया जहां दशरथ जी महाराज पड़े हुए हैं और ये सिंगनी के समान के कही है। पिताजी के सारे अंग तो ढीले हो गए और होठ सूख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मणि से रहित कोई सांप हो। पास में केकई है, वह यूं आंख निकाले हुए बड़े क्रोध की मुद्रा में खड़ी है, ऐसा लगता है कि मानो कोई मौत की घड़ी गिनने के लिए कोई काल रात ही आ गई हो। ऐसे राम जी का स्वभाव तो बहुत ही कोमल करुणामय, अपने जीवन में कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं। अरे जो किसी पास पड़ोस का भी दुख नहीं देख सकते थे, उन राम जी ने आज दशरथ जी को इस अवस्था में देखा और केकई भी इतनी प्रसन्न दिखाई नहीं दी, क्रोध मुद्रा में दिखाई दी। मन में आया क्या बात है, तो थोड़ा धैर्य धारण किया और बहुत आदर देते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, कोई ऐसा यत्न किया जाए कि हमारे पिताजी आनंद में डूबे रहे, बताओ क्या बात है। केकई ने कहा, सुनो राम, सब कारण क्या है, स्नेहवान ज्वलते निशम, जो स्नेह करता है ना वही जलता है, दुनिया में जाके देख लो तुम, दीपक के अंदर लो जलती है। लो क्यों जलती है कि लो घी से स्नेह करती है, वो घी उसके अंदर रहता तो घी जलता है, घी लो नहीं जलती है, घी जलता है। आप देख लो दीपक लगा करके जलते, जब वो घी है ना उसके अंदर ज्यादा जलता घी है, दिखती है लो है साहब, ये रुई जल रही है, रुई बहुत थोड़ी जलती है, जलते हैं वास्तव में जो चिकनाहट होती है वो जलती है, जो प्रेम होता है वो जलता है। तुम्हारा इस तुम्हारा तुम्हारे पिता के मन में तुम्हारे प्रति बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, वो स्नेह आज इनको जला रहा है। सुनो राम, मुझे इन्होंने दो वरदान देने की बात कही थी, मुझे जो अच्छा लगा सो मैंने वरदान मांगा और उस वरदान के मांगते ही लटपटाने लग गए, और बात क्या है, न तो तुमको ये छोड़ सकते हैं और न वो वरदान की वरदान को पूरा करने में इनमें सामर्थ्य है, तुमको छोड़ सके नहीं। सुत स्नेह इत वचन सुत संकट परे उ नरेश, एक तरफ तो तुम्हारे साथ प्रेम और दूसरी तरफ वचन का पालन, दोनों के बीच में तुम्हारे पिताजी फंस गए बेटा। सीधी सीधी बात, जो आदेश दिया जाए तुमको वो मान क्यों नहीं लेते तुम, तो अपने सिर के ऊपर उस आदेश को रख लो और अपने पिता का संकट है वो संकट तुम टाल दो। तो तैयार हूं मां, क्या बात है, निदड़क बैठ कहती कटुबानी, एकदम निदड़क होकर के कैसे केकई अपने मुंह से बात बोलती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार की कठोरता से कठोरता बड़ी से बड़ी कठोरता आ जाए वो भी आज यहां आकर के केकी के सामने घबराने लग जाए, अरे इतनी कठोर वो। अपने जीभ को तो धनुष बनाया और वचनों को बाण लगाया, और वे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रही है केकई की, राजा को मानो अपना निशाना बना रही है, मानो कठोरपन शरीर धारण करके राज धनुष विद्या सीख रही हो। एक बार देवासुर संग्राम में युद्ध हुआ, तुम्हारे पिता का रथ संचालन कर रही थी, उस समय में पहिए की धुर्री निकल गई और बड़े वेग से वो रथ जा रहा था। मैंने उस धुर्री के अंदर अंगुली रखकर पहिए को बचाए रखा, फिर रथ रुक गया, महाराज के प्राण बच गए। उन्होंने कहा केकई आज तुमने हमारे प्राण बचाए, प्राण बचाए इसके लिए एक वरदान, और हम खुश हो गए इसके लिए और एक वरदान, हम तुमको दो वरदान देना चाहते हैं। राम मैंने वो वरदान मेरे पास सुरक्षित रखे कि समय पर मांगूंगी, उसका समय आ गया। पहला वरदान भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान तुमको 14 वर्ष का वनवास। ज्यों ज्यों वो बोलते 14 वर्ष के वनवास की बात आई, मन मुस्काए भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य के समान चमकने लगे भगवान। पहले दीपक के समान, फिर मणि के समान, और अब भगवान सूर्य के समान चमके, ऐसे भगवान। और भगवान बहुत सरल वाणी से बोलने लगे, क्या बात है, आवाज बढ़ाओ थोड़ी। मृदु मंजुल बजनु बाग विभूषण, अपने वाणी के आ भूषण रखते हुए, मतलब ऐसी कोमल वाणी तो सुनने में बहुत प्रिय लगे। अरे मां, पुत्र का तो ऐसे समय ही विचार होता है, वो पुत्र बहुत बड़ भागी होता है। कौन? जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पिता और माता के वचन में अनुराग रखता है। तो यहां माता पिता वचन, पहले मां का नाम आना चाहिए, वरदान तो केकई ने मांगा, लेकिन पिता का नाम पहले क्यों आया? एक तो ये पहली बात तो ये है कि राम जी पिता के ज्यादा भगत थे मां की अपेक्षा, पहली बात। दूसरी बात है, मूल में वचन पिता के ही थे इसलिए पहले नाम पिता का आया। और आगे क्या बोलते हैं, तनय मातु पितु तोषणी हारा, बेटा होता है वो माँ बाप को प्रसन्न करने वाला। देखो वचन में तो माँ पिता का नाम पहले आया है, और तनय मातु पितु तोषणी हारा, पुत्र होता है वो माँ बाप को प्रसन्न करे, संतुष्ट करे। क्यों? क्योंकि शरीर से सेवा होती, शरीर की सेवा होती है, उसमें माँ का स्थान पिता से ऊंचा होता है। वचन में पिता का वचन, और पोषण में संतोष में मां का पहले। और देखो 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी, विशेष कहा ना, अब वही बात भगवान बोल रहे हैं, मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर। देखो मां, मेरा जंगल के अंदर ऋषि मुनियों से विशेष मिलना होगा, विशेष। आपने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, तो मेरा भी ऋषि मुनियों से यूं ही मिलना होता है, पर अब की बार जो मिलना होगा वो विशेष मिलना होगा। कितना बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात है कि पिता की तो आज्ञा है और आपकी सम्मति है। पिता की आज्ञा कैसे, हम जन्मे नहीं, उससे पहले ही पिता की ये आज्ञा हो गई ना कि दो वरदान दूंगा। आपने तो केवल सम्मति रखी है कि दो वरदान में ये काम कर लीजिए, कितना बढ़िया वरदान मांगा है देखो। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, भरत तो जो है प्राण प्रिय पावई राजू। देखो राम जी को है ना, राम जी को वरदान के अनुसार विवेचन करना चाहिए था। राम जी पहले ये कहते हैं कि अच्छा भरत को राजगद्दी तो बहुत अच्छी बात है, तो अपने वनवास की बात पहले कहते हैं और भरत को राजगद्दी की बात दूसरे नंबर में बोलते हैं राम जी की। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, राम जी को इतनी खुशी हुई अपने वनवास की, इसलिए उस खुशी के अंदर राम जी ने एक पूरा दोहा खर्च किया और भरत को राजगद्दी मिले इसका कोई किसी प्रकार से लेश मात्र भी विचार नहीं, तो भरत प्राण प्रिय पावे राजू, सब विधि विधि सब विधि वही सन्मुख आजू। ऐसी बात फिर वापिस अपने देखो माता, ऐसे समय में यदि कोई वन में नहीं जाए तो मेरे को मूर्खों के अंदर सबसे पहले समझा जाएगा। अरे कोई आदमी कल्प वृक्ष का त्याग करके और एरंड को लेवे, एरंड होता है ये इरंडी, कल्प वृक्ष का तो त्याग करे और एरंड को पास में रखे और अमृत को त्यागे और विष मांगे, ऐसा जो महान मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी हो वो भी आज इस मौके को तो वो भी नहीं चूक सकता। केऊ न पायस भयउ चुकाई, मूर्खी तो है जो अमृत को छोड़ करके जहर पिए, कल्प वृक्ष को छोड़ करके एरंड लगाए, अपने एरंडी लगाओ भाई, अरे कल्प वृक्ष लगाओ ना तो एरंड लगाएगा। ऐसा जो महामूर्ख होता है उस महामूर्ख से भी कहा जाए कि भाई तू वन में जाएगा या राजगद्दी करेगा, तो वो कहेगा कि वन में जाऊंगा, बस मुझे तो एक ही बात का दुख है माँ कि इतने दुखी हो रहे महाराज, थोड़ी सी बात के ऊपर बड़ा भारी दुख हो रहा है। माँ तू भी स्नेह में डूबी हुई है, तू भी मुझे बड़ी बात बताती नहीं है, कोई विशेष मेरे से अपराध हो गया है तुम भी खुल करके नहीं बोलती हो और महाराज भी नहीं बोलते हैं, बहुत गहरे हैं हमारे पिताजी, छोटे मोटे दुख से दुखी हो ही नहीं सकते, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बड़ा अपराध हुआ राम जी की दृष्टि में, बड़ा ही अपराध है। क्या कि मेरा यहां अवतार हो गया और 14 बरस तक ये रावण अवतार होने के बाद भी यहां प्रजा को कष्ट देगा, ये बड़ा अपराध मानते हैं राम जी। अब इसको कोई समझे तब ना, भा अपराध भा मोहिते कछु बड़ अपराध। और अवतारों में देखो हिरण्याक्ष को मारा भगवान ने, वरा रूपया तत्काल मारा, हिरण्यकश्यप को मारना थंबे में से नृसिंह भगवान प्रकट वेर मार दिए। किसी अवतार में चले जाओ जिसको मारने के लिए अवतार दिया उसको, अवतार लिया उसको समय नहीं दिया ज्यादा, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और अभी भगवान छोटे से बच्चे दूध पीना ही नहीं छोड़े और उसको 5-6 दिन ही हुए पूतना को मार दिया। सब अवतारों में चले जाओ कोई बीच में गैप नहीं है। राम जी कहते हैं भा भा मोहिते कछु बड़ अपराध, बड़ा अपराध हो गया, 14 वर्ष तक रावण रहेगा, लेकिन ये अपराध भगवान सीधा प्रकट नहीं कर रहे हैं। जाते जाते मोहिन कहत कछु राव, मोरी सफद तोई कहू सती भाऊ। कोई बड़ा अपराध हुआ है और पिताजी बहुत कुछ बड़े स्नेह में डूबे कुछ कह नहीं रहे हैं, माता तुझे मेरी शपथ है। क्यों जी, राम जी को कहा जाए आपने अपनी शपथ क्यों दिलाई, कि मेरी माँ ने मेरी शपथ जब पिताजी ने खाई तब विश्वास किया। राम शपथ सत, 100 बार राम की शपथ खाता हूं तो कहे वो कर दूंगा। इधर राम जी कहते हैं कि जब मेरे पिताजी ने मेरी शपथ खाई है तुमको भी मेरी शपथ है, तुम भी मेरी सौगंध खाओ और सती भाऊ सत्य सत्य बात है वो कहो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इतने सरल, इतने सीधे राम जी महाराज, इनके वचन बहुत सरल, लेकिन वो बड़ी कुटिल उनकी आंखें बड़ी कुटिल और यूं सोचती है कुटिलता से। कैसे? जैसे पानी होता है एकदम सरल होता है, लेकिन जौंक उसमें भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है पानी में भी। अरे टेढ़ी मेढ़ी तो तब चलो जब कोई टेढ़ी मेढ़ी जगह आवे तो। अब चूहा है वो बिल में जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं यूं जाएगा, बिल टेढ़ा मेढ़ा है। पानी पानी है, पानी सीधा है तो जौंक उसमें सीधी नहीं जाती, यूं यूं टेढ़ी मेढ़ी चलती है। यहां टेढ़ी मेढ़ी क्यों चलती है? भाई स्वभाव है। ऐसे ही इतने सीधे इतने सरल राम जी महाराज बोल रहे हैं, फिर भी केके का स्वभाव नहीं बदला। हर्ष करके, हर्षित होकर के राम जी से बोल कपनी कपट के, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं शपथ तुम्हार, सबसे पहले शपथ तुम्हार, तुम्हारी तो शपथ खा करके बोलता हूं। और भरत के आना, और भरत का है, भरत के, भरत की सौगंध बोल दो, शपथ सौगंध तो एक ही है। तो मैं शपथ तुम्हार और भरत के आना, भरत की आन के ऊपर मैं तुम्हें ये बात कहती हूं कि और कोई दूसर हेतु नहीं, हेतु न दूसर मैं कछु जाना, कि मैंने अपराध किया वो कि तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। 14 वर्ष के अपराध है ना मां? नहीं नहीं, जननी जनक बंधु सुख दाता। 14 वर्ष तो पहले भाई बंधु माता पिता सबको सुख देने के लिए तो है। राम सत्य सो सब कर चुके हो, तुम कहते हो प्रत्येक बात सत्य है। अब राम जी की केकी की क्या इशारों में बातें हो रही है, आओ क्या आप लोग समझ सकते हैं? तुलसीदास जी ने कैसे शब्द दिए, दोनों तरफ फिट हो जाए। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहु तुम पितुमा तु वचन रत आए हो। तुम तो माता पिता के वचनों के अंदर रत रहते थे, तुमसे क्या अपराध होगा? तुम अपने पिता को समझाओ, मैं तुम्हारे पर बलिहारी होती हूँ कि ये चौथेपन का समय है, माने जीवन के संध्या का समय, चौथा चौथी आयु चल रही है, तो उचित नतास निरादर कीने, इन ऐसे समय का निरादर तो करो मत, क्योंकि तुम्हारे जैसा तुम सम सुवन सुकृत जई दीने, तुम्हारे जैसा पुत्र मिला तो सारे पुण्यों का, सारे पुण्यों की सीमा है। तुम्हारे वचनों का उल्लंघन करने पर इनकी बड़ी भारी हानि हो जाएगी। देखो राम जी की इनकी बातें हो रही, पिता की तो कोई बातें ही नहीं हुई, विशेष बात नहीं हुई। क्या केके कितनी समझदार है केके, हो राम ही मातु वचन सब भाए, ऐसे वचन कहे केके ने, राम जी को सब वचन बहुत अच्छे लगे। गई मूर्छा रामई सुमेरी निप फिर करवट लीन। अब वो दशरथ जी महाराज करवट बदलते हैं और राम राम ऐसे बोलते हैं, तो मंत्री जी ने कहा, सचिव सुमंत्र ने कहा कि महाराज राम तो कब के आ गए, और राम जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अवनी पो अगनी राम पग उधारे, राजा ने सुना कि राम जी आ गए, बड़ा धीरज करके आंख खोली, देखा कि चरणों में राम है, उन्होंने अपने छाती से लगा लिया, बोला कुछ गया नहीं। इतना अंदर ही अंदर आनंद हुआ जैसे खोई हुई मणि सांप को मिल जाती है और सांप उसको अपने में समेटता है, ऐसे दशरथ जी महाराज राम को अपने में समेटने लगे। राम जी को देखा और देखते वारी विलोचन चला, विलोचन वारी प्राव, रोते रहे रोते रहे, कुछ बोला नहीं गया। मन ही मन में कहते हैं कि हे विधाता, कोई ऐसा उपाय करो कि राम वन में जावे ही नहीं। विधाता को कहा आपने, तो आपने शंकर भगवान को कैसे बुला दिया कि अब शंकर भगवान को याद करके प्रार्थना करते हैं, हे सदाशिव भगवान, हे आशुतोष, हे औडर दानी, सबके हृदय में आप रहते हो, राम के हृदय में एक बात पैदा कर दो कि नहीं हम तो वन में नहीं जाएंगे। कह दिया पिताजी ने तो कह दिया हम नहीं जाएंगे। वचन अमोर इताजी रह ही घर कि दशरथ जी ने ऐसा क्यों कहा? दशरथ जी के मन में प्रेम था। दशरथ जी महाराज चाहते थे कि मेरे वचनों का राम उल्लंघन कर ले। कहते ऐसा क्यों? दशरथ जी है वो प्रेमी भक्त हैं। देखो प्रेमी भक्त की अटपटी क्रियाएं हम लोगों के समझ में नहीं आती है। दिखते तो संसारी जैसे हैं लेकिन इनका प्रेम बड़ा विचित्र होता है। कन्हैया के कान पकड़ करके थप्पड़ मारती हैं वो, ये गोपियां कान पकड़ के थप्पड़ मारती हैं, यशोदा जी लगाती हैं, कभी कभी वो भी कान पकड़ती हैं, भगवान रोते हैं। भगवान को कभी भगवान माना ही नहीं यशोदा ने। ये प्रेमियों की एक अलग ही दुनिया है, अटपटी बातें करते हैं। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं हे भगवान, मेरे वचनों का त्याग करके, शील संकोच का त्याग करके, स्नेह का त्याग कर घर में ही रहे, ऐसी बात कर रहे हैं। मेरा अपयश भले ही हो जाए, मैं चाहे भले ही नरक में पड़ा रहूं, सब प्रकार का दुख सहता रहूं, पर राम मेरे आंखों से नहीं जाना चाहिए। राम जी के सामने कुछ बोले नहीं, पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता होता है वो कभी स्थिर नहीं रहता, वो यूं हिलता ही रहता है, चाहे हवा न चले ना तो यूं हिलता ही रहता है पीपल का पेड़, पीपल का पत्ता। पीपल पात सरिस मन डोला। राम जी महाराज ने पिता के दर्शन किए और देश काल अवसर के अनुसार बड़ी नम्रता से कहा कि हे पिताजी क्या कहूं, आपके सामने कुछ भी कहना कुछ ढीठपना ही है, अनुचित कहूं तो आप अपना पुत्र मानकर मुझे क्षमा करना, एक छोटी सी बात के लिए आप इतना बड़ा दुख मान रहे हैं, आप मुझे पहले पहले क्यों नहीं बता दिए, आप मुझे खुद क्यों नहीं बता दिए, हे मेरे स्वामी, हे स्वामी, मैं तो माता से ये सब प्रसंग सुना तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, ये तो बहुत आनंद का समय है, जिस समय को मैं चाहता था ना वो समय है, आप अपना शोक दूर कीजिए, आज्ञा दीजिए, ये बहुत हर्ष का समय है, क्योंकि मेरे हर्ष का समय इसलिए आपका भी हर्ष का होना चाहिए। पिता पुत्र के वनवास के कष्ट के कारण से ही तो कष्ट पा रहे हैं, तो कहते हैं हमारे मन में यदि हर्ष है तो आपके मन में भी हर्ष होना चाहिए। पुत्र वही होता है पिताजी कि जिसके चरित्र से पिता के मन में आनंद आए, जो माता पिता को प्राण के समान प्रेम देता है उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब सुलभ हो जाते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, आपकी आज्ञा पाऊंगा तो जन्म मेरा सफल हो जाएगा। कोई भी पुत्र माँ बाप की आज्ञा मानेगा उसका जन्म सफल हो जाएगा, और कोई बात नहीं आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा और मैं बहुत जल्दी आ भी जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा, बस अब मैं माँ के पास जाता हूं। देखो अब यहां ना, यहां राम और केकई बोले और राम और दशरथ जी के संवाद में राम जी बोले, दशरथ जी बोले कुछ नहीं है यहां ना, बोले कुछ नहीं। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरन दीना। राम जी तो वहां से माँ के पास गए, माँ के पास जाता हूं। अब भाई कोई बात नगर में रह सकती थी क्या? नगर व्यापी गई बात ही सुती थी, वो बात बहुत जल्दी नगर के अंदर फैल गई, जैसे बिच्छू का डंक पड़ते ही शरीर में जहर ही जहर हो जाता है, एकदम वो तड़फड़ता है, सारे शरीर में जहर फैल जाता है, ऐसे सारे नगर के अंदर ये बात फैल गई। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कोई दावा नल में बेल की और वृक्ष की दशा होती है, ऐसे नर नारी की दशा हो गई। अरे क्या हो गया, ये सबके मुख सूख गए, आंखों से पानी आने लगा और आपस में कहने लगे। और अयोध्या के अंदर करुणा रस सेना के साथ आ गई, बहुत जोर से आई है करुणा, करुणा की नदी। आपस में मिलते हैं, वो बात करते हैं, जहां तहां केके को गाली निकाली जा रही, उपालम देते हैं, इस पापिनी ने क्या किया, क्या सोचा। छाई भवन पर पावक धरे हुए, हमारे खूब फले फूलने रहने वाले अपने महल को इसमें इसने आग में झोंक दिया। देखो केके की कुबुद्धि, देखो अपनी आंख निकाल करके आंख को देखना चाहती है, अपने आंख को तो निकाल ले और फिर इस आंख को देखेंगे हम, सिर देखेगी तेरे आंख तो निकल गई, देखेगी कहेगी मूर्ख कहीं की, निज कर नयन काड चाहे दीखा, डारी सुधा विशु चाहत चीखा। मतलब अमृत को तो पटक दिया और विष का स्वाद लेना चाहती है। अरे ये कहां से आ गई ये केकई, पालव बैठ पेड़ ही काटा, पत्ते पर बैठ करके जिस पत्ते पर वो बैठी है उसी पत्ते पर बैठ करके वृक्ष को काट रही है। ओहो, यहां तो जितना सुख था उस सुख की जगह इसने शोक को ठसाठस करके भर दिया। ये राम तो सदा इसको प्राणों के समान प्यारे लगते थे, गोदियों में लिए फिरती थी, हरदम इसको छोड़ती नहीं अपने साथ रखती थी, क्या कारण हुआ कि आज इसने कुटिलपन किया। पता नहीं है भाई, लुगाइयों का स्त्रियों का फिर बता देते हैं, लिखा है वैसा बांस देते हैं भाई, पता नहीं है किसके साथ हंसती हुई कब रुला दे, कब रोती हुई कब क्या कर ले। सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगऊ अगाध दुराऊ। नारी का चरित्र है बहुत। एक ने कहा कि देखो बिचारे राजा को दोष मत दो, राजा है वो धर्म की सीमा है, वो बिचारा धर्म का आचरण करने वाला है। शिवी ने कितना कष्ट उठाया, दधीची ऋषि ने हड्डियां दे दी, हरिश्चंद्र ने राज्य वगैरह सब लुटा दिया, इन्होंने त्याग किया तब आज नाम लेते हैं। रहने दो, ये सब भरत की चाल है। भरत ने देखा कि मैं यहां रहूंगा, उस समय में तो ये बात माता के द्वारा ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो चला जाऊं ननियाल, मां को कह दिया तू वरदान मांग लेना। सब भरत की चाल है ये, करे राम भरत का ऐसे विषय में नाम लेते हो तुम्हारे जीभ में कीड़े नहीं पड़ जाएंगे। राम और भरत का जो प्रेम है सारी दुनिया जानती है। अरे मूर्खों, चंदु चबे बरु अनल कन, इस चंद्रमा से अग्नि के कण भले टपकने लग जाए, अमृत अपना स्वभाव बदल करके जहर भली हो जाए, परंतु भरत कभी भी राम के प्रतिकूल स्वप्न में भी नहीं हो सकते। कैसी बातें करते हो, ऐसी बातों करोगे पाप लगेगा, ये बात तुम्हारी बहुत झूठी है, थूको मुंह से, ऐसे बोलने लगे। ये सब विधाता का काम है। ये विधाता भी बड़ा विचित्र है, सुधा दिखाए दीन, बातें तो करता है अमृत की और जहर जहर जो है जगह जगह मिलता है। सारे नगर के अंदर खलबली मच गई। अब देखो कई कई मतलब बहुत सी ऐसी भी स्त्रियां थी जो केकी से बहुत मित्रता रखती थी। कुछ ब्राह्मणियां थी, कुछ और भी थी, घर में बड़ी बूढ़ी भी थी, उनकी और भी कई दास दासियां थी, केकी से बहुत मित्रता, केकी का स्वभाव बहुत उदार था। कौशल्या का जो स्वभाव था उसमें ज्ञान की मुख्यता थी, दशरथ जी के स्वभाव में प्रेम की मुख्यता थी, केकी में उदारता बहुत थी, खूब देती थी उदारता। हर माता में अपनी अपनी विशेषता। तो केकी के पास में केकी की शुभ चिंतिकाएं आकर इकट्ठी हुई और उनको जो बात कहने लगी तो केकी के हृदय में चुभे। वापिस बोली तो कुछ नहीं, लेकिन वो कहने लगे, केकई जी आपने हमको कितनी बार कहा है कि मुझे राम जितना प्रिय लगता है उतना हमको भरत नहीं लगता, तुम्हीं तो हमको कितनी बार कहा है, तुम कितना राम पर प्रेम करते थे, एक रात में और वो भी कुछ क्षणों में ऐसा क्या कुछ हो गया कि आज तुमको राम अपराधी दिखाई देने लगा जिसे तुम वन में भेज रहे हो। तुमने हमसे कितनी बार कहा कि क्या बताएं, कौशल्या बहन का स्वभाव तो बड़ा ठंडा है और तुम्हारा अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ दिया, इतना बड़ा बजरा घात कर दिया तुमने, अब तुम सोचो कि क्या सीता अपने पति का संग छोड़ देगी, क्या लक्ष्मण जी राम के बिना यहां अयोध्या में रह जाएंगे, क्या भरत यहां का राज भोगेंगे और क्या राम के बिना महाराज जीवित रहेंगे। सबका उत्तर है नहीं, चारों ही बात नहीं होंगी। न तो सीता राम के बिना यहां रहेगी, न राम के बिना लक्ष्मण रहेंगे, न भरत राजगद्दी भोगेंगे और न ये महाराज जिएंगे। तुमने क्या मांगा, किसके लिए मांगा, कुछ भी बात होने वाली नहीं है, इसलिए अपने मन की बात छोड़ो, क्यों झूठा कलंक ले रही हो। तुम भरत को युवराज बनाओ, सब लोग सहमत हैं, पर राम को वन में क्यों भेजते हो, राम कोई राज के भूखे तो है नहीं, उनको तो विषय रस से वैसे ही प्रेम नहीं है। अच्छा एक काम करो, भरत को राजगद्दी वाला वरदान तो है ही, दूसरे वरदान में थोड़ा संशोधन करो कि राम जी महल में नहीं रहेंगे, अपने गुरु जी की कुटियाओं में रहेंगे। गुरुगृह बसव राम तजी गेहू निरपसन असबरु दूसरु लेव, थोड़ा संशोधन कर लो तुम। यदि तुम हमारी कही हुई बात नहीं मानोगी तो केकई जी याद रखना आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। और यदि आपने ये सब अयोध्या में, क्योंकि राजगद्दी होने वाली है, इस उत्साह में मजाक की हो, केकई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने उत्सव के अंदर मजाक करते हैं, मजाक यदि आपने मजाक ही की हो तो उसकी सीमा खत्म हो गई। जल्दी करो, लोग मर जाएंगे राम के वियोग में, जल्दी बोल दो। तुमने मजाक में भी राम जी को वन गमन की बात कह दी हो तो जल्दी करो, नहीं तो यहां लोगों के प्राण निकल जाएंगे। जल्दी करो, लोगों का कलंक दूर हो जाए, तुम्हारा कलंक दूर हो जाए, लोगों का शोक दूर हो जाए। हम तो कहते हैं राम यदि तुम्हारी बात सुनकर जाने भी लगे, तुम सामने जाकर खड़ी हो जाओ, बेटा मेरी बात मत मानो क्योंकि मैंने ये बात मजाक में कही है, हट फेरू रामई जात बन जानी बात दूसरी चाल ही, तुम बन वाली बात एकदम समाप्त कर दो। याद रखो, जिमी भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमी जामिनी, जैसे सूर्य के बिना दिन की क्या शोभा होती है, प्राणों के बिना शरीर कैसा लगता है, चंद्रमा के बिना रात कैसी अंधेरी लेती है, इसी प्रकार से तुम अच्छी तरह से समझ लो कि प्रभु राम के बिना ही सारी अयोध्या सूनी हो जाएगी। सखी ने सिखा वनुदीन, ऐसे ऐसे सखियों ने उनको खूब सिखाना दिया, परंतु वह कुछ भी नहीं मानी, ते कछु कानन कीन, कान के अंदर उसने तेल डाल लिया है, कुछ नहीं सुना, उत्तर तो कुछ दिया नहीं। लेकिन उनके बाण वचन बाणों के समान लगे। जैसे जैसे एक आज कैसे लग रही थी, कैसे देख रही थी कौशल्या, जैसे कोई सिंगणी है, वो भूखी सिंगणी जैसे हिरणियों को देखती है, ऐसे ऐसे वो देख रही, तुम मेरे को उपदेश देती हो। उन्होंने देखा कि भाई ये असाध बीमारी है। जब वैद्य को पता चले कि भाई ये आदमी मरने वाला है, तो पहले ही कहता है भाई अब आप इसको दूसरी जगह इलाज कराओ, इसका मतलब है कि बस खत्म। व्याधि असाध्य जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। राज करती है देव बिगोई, की नसी असजन करने को। ये राज करती यहाँ बीच में जाने क्या हो गया। इस प्रकार से सब लोग यहाँ इधर विलाप कर रहे हैं, उधर राम जी महाराज अपनी माँ के पास आए और माता मुख प्रसन्न चित चौगन चाहू। माता यू प्रसन्नता से भगवान की पूजा कर रही, बड़ा उत्साह राम जी के मन में, बड़ा उत्साह राम जी के मन में, चौगुना उत्साह हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है। राम जी को इतना अच्छा क्यों लग रहा है, राम जी को पता है कि मेरा अवतार का रहस्य अभी खुलने वाला है। नव गयंदु रघुवीर मनु, राम जी का मन तो कैसा है कि जैसे कोई बच्चा हाथी हो, थोड़ा सा जवान हाथी हो, बच्चा छोटी उम्र का हाथी, वो बस में आवे क्या, किसी की बस में नहीं आए। परंतु राजु अलान समान, वो अलान के अंदर जैसे बंधा हुआ, अलान माने कांटेदार एक सांकड़ होती है जिससे हाथी को बांधते हैं, छोटी मोटी सांकड़ नहीं, कांटे रहते, जरा सा वो हिलेगा तो कांटे अंदर चुभेंगे उसके, हिलती छूट जाए जन बन गवनु, छूट जाए बन गवन सुनी उर अनंदु अधिकान। अब वो जैसे वो अलान राज क्या था, वो अलान था, वो सांकड़ थी लोहे की कांटेदार, वो छूट गई और राम जी महाराज मस्त हो गए, उनकी चाल बदल गई, बहुत आनंद आ रहा था राम जी, बहुत प्रसन्न थे। और आनंद अधिकान, उनके आनंद, उनके मन में बहुत ज्यादा आनंद। क्यों आनंद, आनंद इसलिए था कि जन्मे एक संग सब भाई, शयन बाल केल शयन लड़काई, और संग संग उपवीत विवाह, माने हम भाई बराबर बराबर सब जन्मे, संग सब भाई, हम एक साथ सब पैदा हुए और एक साथ ही कर्ण वेद उपवीत सुहावा, कर्ण वेद वार जनेऊ ही विवाह हुआ, सब एक साथ हुआ, लेकिन हमको राजगद्दी मिलती है और छोटों को नहीं मिलती, ये हमको अच्छा नहीं लगा। वो समय आ गया राम जी का, इसलिए छूट जान बन गवन सुनी उर आनंद अधिकार, खूब आनंद आया राम जी को। राम जी महाराज गए, उधर माँ है बड़ी प्रसन्नता से भगवान की आरती कर रही है, और पास में ही राम जी महाराज देख रहे हैं कि माँ की कब आरती पूरी हो और कब हम प्रणाम करके यहाँ से विदा हुए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
सिया वर राम चंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वाली
की जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय
जय जय